प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, उसके बारे में एक विशेष श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, जिसमें मनुष्य जीवन के जो जीवन की जो परम सिद्धि है वो किस पर निर्भर है उसकी शिक्षा श्रीमद् भागवतम से हमें प्राप्त होती है। तो श्रीमद् भागवतम में कई सारे स्कंद हैं, उसमें से एक स्कंद है पांचवा स्कंद, जिसमें भगवान ऋषभ देव का वर्णन आता है। भगवान के अलग अलग अवतार हैं, भागवतम में लगभग 25 अवतारों का वर्णन है। तो ऋषभ देव जो अपने पुत्रों को ये शिक्षा देते हैं भागवतम के पंचम स्कंद में, ऋषभ शब्द का अर्थ है जो श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ। तो भगवान मनुष्य में एक प्रकार से सर्वश्रेष्ठ है ऋषभ देव, और भगवान श्रेष्ठ है तो उनकी शिक्षा भी सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसे ऋषभ देव एक समय में अपने जो 100 पुत्र हैं उनको शिक्षा प्रदान करते हैं। हाँ, उन 100 पुत्रों में एक सबसे वरिष्ठ और श्रेष्ठ पुत्र थे जिनका नाम था भरत। क्या नाम था? भारत। जिनके कारण ही ये देश का नाम क्या पड़ा? भारत। अभी इधर बहुत सारे भारत देश के गुणगान में गीत चल रहे थे, आप लोग आए नहीं, मैं आधे घंटे से सुन रहा था।
अटल बिहारी का
अच्छा, ओके। तो इस प्रकार से उनके जो 100 पुत्र थे ऋषभ देव के, उनके जो बड़े पुत्र थे भरत, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत है। तो ऐसे ऋषभ देव एक दिन अपने इन 100 पुत्रों को बिठाते हैं और उनको जीवन की परम सिद्धि की शिक्षा प्रदान करते हैं। अभी हमारे घर में हम देखें, एक पुत्र को बिठाना कितना कठिन है, वो बैठता नहीं है, दूसरा शिक्षा देना तो बहुत दूर। हाँ, बच्चे बचपन से ही माता पिता को शिक्षा देना शुरू करते हैं, टीवी चालू करो तो थोड़े बहुत बैठ जाएंगे, नहीं तो आजकल सबके पास मोबाइल है तो हर कोई अकेला अकेला अपने उसमें बैठा रहता है। तो शास्त्र कहते हैं कि ये भगवान ऋषभ देव का जो शिक्षा है, उनका आचरण है, वो सर्वोत्तम है। वो जिस प्रकार से अपने पुत्रों को शिक्षा देते हैं उसी प्रकार से ही ये हमारा उत्तरदायित्व है, व्यक्ति को अपने जो अधीन है पुत्र आदि उनको सिखाना चाहिए बचपन से। क्या सिखाना चाहिए? भगवत भक्ति का नॉलेज, ज्ञान देना चाहिए। तो एक दिन उन्होंने उनको बिठाया और श्रीमद् भागवतम में वो फेमस श्लोक आता है जिस पर श्रील प्रभुपाद ने कई सारे प्रवचन दिए, और वो श्लोक है नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान अर्हते विड्बुजामे तपो दिव्य पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध तस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। तो ये फेमस श्लोक जिस पर श्रील प्रभुपाद ने कई स्थानों में प्रवचन दिए और कई बार इसको यूज किया, तो इसमें श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यदि मैं अमेरिका आया और यदि वहां अमेरिकन सरकार को ये पता चलता कि ये स्वामी जी भारत से आए हैं और इस श्लोक की शिक्षा देने आ रहे हैं यहाँ। तो जैसे उनको पता चलता तो प्रभुपाद ने कहा मुझे वो लोग वहां से दूसरे दिन वापस भेज देते, क्योंकि इस श्लोक का सार और शिक्षा क्या है। तो वो शिक्षा ये है मेनली, प्रभुपाद ने कहा कि मैं वास्तव में लोगों को रोकने के लिए आया हूं कि पशु के समान अत्यधिक कार्यों में मत लिप्त हो। हाँ, पशु दिन रात मेहनत करता है, कष्ट करता है, तो प्रभुपाद ने कहा मैं रोकने के लिए आया हूं समाज को कि पशु के समान अपना जीवन केवल कष्ट करने में व्यतीत मत करो, उसके लिए ये मूल्यवान मनुष्य का देह नहीं मिला है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा वहां का जो कल्चर है वो कंज्यूमर सोसाइटी है। हाँ, कंज्यूम कर करके व्यक्ति मरता है। यहाँ इंडिया में क्या है, कस्टमर। हाँ, कष्ट कर करके जो मरता है वो कौन है, कस्टमर है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इस श्लोक की शिक्षा वास्तव में उनके मुंह पर तमाचा है। तो इस श्लोक में वो कहते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, सबसे पहले वो कहते हैं नायम देहो देह भाजाम नु लोके, ना आयम देहो, कि ये जो देह है, शरीर है, देह भाजाम, जिनके पास ये बॉडी है मनुष्य का, जिनको ये मिला है विशेष रूप से नृलोके, मनुष्य शरीर, उन व्यक्तियों को ये जानना चाहिए कि मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। तो इस श्लोक में सबसे पहले ऋषभदेव कहते हैं अपने पुत्रों को दो चीजों के बारे में, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यही तो बुद्धि, हमारा मन तो हमेशा पागल के कार्य करने के लिए भागता रहता है, लेकिन मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि विवेक बुद्धि होनी चाहिए। व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, जो नहीं करना है। तो सर्वप्रथम ऋषभदेव अपने पुत्रों को शिक्षा देते हैं, वो कहते हैं कि क्या मत करो हे मेरे पुत्रों। सबसे पहले वो कहते हैं कष्टान कामान, दो शब्द बोलते, कौन से दो शब्द है, जोर से बोलिए। हाँ, ये दो शब्द वास्तव में ये संसारिक जीवन, भौतिक जगत का जो कष्टप्रद स्थिति है उसको दर्शाते हैं। तो ऋषभदेव कहते हैं कि कष्टान कामान ये मत करो। कष्ट और कष्ट क्यों करता है व्यक्ति, काम की पूर्ति करने के लिए। प्रभुपाद एक बार हिंदी प्रवचन दे रहे थे तो उन्होंने कहा, वो कहते कि मैं कहा कलकत्ता में देखा कि लोग गधे के समान ठेले ढोते जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि इस प्रकार से मनुष्य जीवन इतना अधिक व्यस्त रखा है, इवन गधे से भी अत्यधिक काम करता है व्यक्ति। मतलब गधा तो इतना बिजी रहता है, सुबह से शाम तक धोबी का बोझ धोबी घाट से उठा के घर ले जाएगा, घर से फिर जहाँ कस्टमर है उनके घरों में जाएगा, फिर घूम घूम के शाम को वापस आएगा। और गधे को पूछे, अरे तुम करते क्या हो, पूरे दिन इसमें लगे रहते हो, कोई एक ड्रेस मिलता है क्या आपको पहनने के लिए, इतने सारे कपड़े घुमा घुमा के वापस आ जाते हो। वो कहेगा नहीं, एक ड्रेस भी पहनने को नहीं मिलता है। फिर मिलता क्या है, क्यों करते हो, वो कहेगा कि हरी हरी घास शाम को जब आता हो ना तो जो मेरा मालिक है वो खिलाता है। तो दूसरा गधा कह सकता है कि अरे इतने सारे असंख्य गधे पड़े हैं जो तो फ्री का घास खा रहे घूम घूम के, तुम्हें इतना कष्ट करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन वो कहते हैं नहीं, हाँ मैं कष्ट नहीं करूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, ये हम कन्विंस हो गए हैं, मैं कुछ करूंगा नहीं, अत्यधिक कष्ट तो मुझे नहीं मिलने वाला। तो इस कारण से यदि मनुष्यों को देखे हम तो मनुष्य भी दिन रात गधे के समान कार्य कर रहे हैं, बल्कि ये यदि गधा सुनेगा तो गधा के प्रति ये अपराध है। क्या है, गधे के प्रति अपराध है ये कहना कि गधे के समान काम कर रहे हैं, बल्कि आजकल गधे भी काम इतने नहीं करते। करते क्या, मैं हमेशा सोचता हूँ कि बचपन में सब जगह गधे दिखाई देते थे काम करते हुए, लेकिन आजकल गधे भी नजर नहीं आते। मनुष्य क्या बन गए, अभी गधे बन गए हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, असंख्य कष्ट उठा रहे हैं। इसलिए ऋषभदेव कहते हैं कष्टान कामान, तो कहते कष्ट मत करो इतना अधिक, इतना अत्यधिक परिश्रम क्यों। तो संस्कृत में ये जो काम शब्द है उसको, उसका अर्थ है काम वासना, या फिर काम शब्द का दूसरा अर्थ है भौतिक असंख्य इच्छाएं। और हिंदी में भी, हिंदी में काम शब्द का मतलब क्या है? कार्य करना, है ना। जैसे आप किसी को कहते हो कि प्रभु जी, ओ माता जी, आप सत्संग में आया करिए, तो वो क्या कहते हैं लोग? बहुत काम है। क्या है? बहुत काम है। तो है ही बहुत काम, इसलिए टाइम नहीं है हमारे पास। तो उस व्यक्ति के पास अत्यधिक काम होगा बाहर करने के लिए, जिसके अंदर क्या है? काम भरा पड़ा है। तो हम बाहर, हमारे लिए इतना काम क्यों है करने के लिए है? क्योंकि हमारे हृदय में काम भरा पड़ा है। काम मीन्स डिजायर्स, असंख्य डिजायर्स। और जिनकी पूर्ति करने के लिए व्यक्ति को दिन रात कष्ट करना पड़ता है। इसलिए क्यों, हाँ वो कहते हैं, ऋषभदेव अपने पुत्रों को कहते, क्यों इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, हाँ, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए? क्योंकि हमारे कष्टों का कारण ही क्या है? कामनाएं हैं। असंख्य कामना रुदी माजे मोर, भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं कि हे कृष्ण, क्या बताओ, मेरे हृदय में असंख्य कामनाएं हैं, और इन कामनाओं के कारण भी मैं बहुत कष्ट उठा रहा हूं, जिनके कारण मैं अपना कष्ट किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता। तो वो कहते हैं कि कष्टान कामान अरहते विड भुजामे। फिर एक उदाहरण देते, कौन ऐसा दिन रात लगा रहता है? तो वो कहते, कौन है वो? विड भुजाम, जो मल खाता है। मल खाने वाला कौन है? सुवर है। तो ऋषभदेव कहते अपने बच्चों को, अरे पुत्रो, ये सुवर है जो दिन रात कष्ट करता है, क्योंकि काम की तृप्ति करने के लिए, हाँ, इसलिए वो सुकर दिन रात लगा रहता है मल खाने के लिए। तो सुकर उसका नाम क्यों है? क्यों कहते सुकर उसे? शास्त्र कहते सुकर इसलिए बोला जाता है, सुसु करोति इति सुकर, जो चलता है ना सुअर, प्रकृति ने उसको इतनी अच्छी नाक दी है, मुंह दिया है, गटार में डालता है और सूंघते सूंघते ढूंढ ही लेता है उसका जो फाइनल गोल ऑफ लाइफ है, पूरे दिन का जो लक्ष्य है वो ढूंढ ही लेता है, उसका आस्वादन करता है। तो उसकी नाक से आवाज आती रहती है, आप देखोगे। और सुकर की ये खासियत है कि ऊपर देख के नहीं चलता, कहाँ देख के चलता है? हमेशा हमेशा नीचे, हाँ, हमेशा वो ढूंढता रहता है, हाँ, गंदगी में सूंघता रहता है, ढूंढता रहता है, सदैव वो नीचे देखता है। हाँ, ऐसे हमारे एक भक्त मुंबई में प्रवचन दे रहे थे, तो जितने भी प्रवचन श्रोता सुनने के लिए बैठे थे, तो उनके लिए सबने एक प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा कि आप लोग बताओ मुंबई वासियों, कि आप अपने आखिरी में, मतलब आप ये बताओ कि कब आपने आकाश को देखा है? कब? आपको भी मैं पूछू, लास्ट आपने कब आकाश को देखा है? स्काई कब देखा आपने? आखिरी कब देखा? नहीं नहीं नहीं, वैसे मींस कल देखा, परसों देखा, 15 दिन पहले देखा, 1 हफ्ता पहले देखा, कब देखा? वो जब श्रोताओं को पूछा, किसी ने भी हाथ नहीं ऊपर किया। कहा भूल ही गए, आकाश तो देखा ही नहीं। हाँ, सुअर ऊपर देखता है क्या? नहीं। आजकल मनुष्यों की भी स्थिति ऐसी है कि वो भी, उनके पास भी ये भगवान की जो सुंदर प्रकृति है, तारे हैं, चंद्रमा है, नील वर्ण जो आकाश है, उसको देखने के लिए भी समय नहीं है, क्योंकि उनके पास 2 चीजों में लगे हैं, कष्टान कामान, कष्टान कामान। तो और वैसे भी थोड़ा ऊपर देखे तो कहां तक देखता है? बिलबोर्ड तक देखता है। एडवर्टाइज बिलबोर्ड्स कहां कहां लगे, उसकी हाइट भी उतनी होती है, उससे ऊपर आग जाती नहीं है। इतने भौतिकतावादी लोगों ने इतने बैरिकेड्स एक प्रकार से बना के रखे हैं कि हम ऊपर भी आसमान को नहीं देख सकते। इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि इतनी दयनीय स्थिति है आजकल, हम इतने अधिक कठिन स्थिति में हैं कि भगवान की जो प्रकृति है, नेचुरल, हाँ, जो घास है, पृथ्वी है, उसको भी हम कभी स्पर्श नहीं कर पाते। चलते भी है तो किसके साथ चलेंगे? किसके साथ? शूज, जूते, और पाव खोलेंगे भी तो भी नीचे क्या है? मार्बल, टाइल्स। लेकिन कभी भी ये जो नेचुरल प्रकृति है उसका स्पर्श नहीं करते। और वही तो संस्कार बच्चों में है। किसी बच्चे को पूछो आप जाकर, बेटे बताओ दूध कहाँ से आता है, क्या बोलेगा? हाँ, मदर डेरी या दूध वाला दूध देके जाता है उसको। उससे परे पता नहीं कि गाय दूध देती है। उसको पूछो ना पानी कहाँ आता है, सुबह नल के नहाते हो, तो कहते हैं पानी कहाँ से आता है, नलके से आता है। मतलब ऐसी स्थिति एक तो हमारी है और हम उचित शिक्षा न देने के कारण आगे आने वाली पीढ़ी की भी है। तो इस प्रकार से जो सुअर है हाँ उसका अंततः सुअर को पूछो इतना कष्ट कर रहे हो अंत क्या प्राप्त करने के लिए, तो वो कहेगा बस एक ही चीज, विष्ठा प्राप्त करने के लिए, मल प्राप्त करने के लिए। तो इसी प्रकार से देखे कि जो मनुष्य समाज का जो सबसे नगण्य वस्तु है जिसको फेंका गया है मल को, वो गोल है किसका, एक सुअर का। तो इस प्रकार से मनुष्यों की स्थिति है। सुअर को यदि पूछे कि आपसे सबसे बड़ा, सबसे एडवांस समाज आपका कौन सा है, हाँ तो कोई सुअर बोल सकता है कि जहां फ्रेश मल अवेलेबल है निरंतर, वो समाज क्या है, एडवांस है। सोचो वो तो छोड़ ही दीजिए, हाँ एक एक सुअर को आप मिले गलती से तो उसको पूछो, और पढ़ा लिखा सुअर हो कोई उसको पूछो कि पढ़ने लिखने के बाद कहाँ जाना चाहते हो। अभी कोई मनुष्य सूट बूट टाई पहन के स्कूल कॉलेज पीएचडी होल्डर उसको पूछते हम, तो पूछता है कि मैं तो अमेरिका जाना चाहता हूँ, इधर उधर जाना चाहता हूँ। लेकिन कोई पढ़ा लिखा सुअर है उसको आप एक प्रश्न पूछेंगे तो वो क्या कहेगा, कहाँ जाना चाहता हूँ, तो वो सुअर कहेगा कि मैं तो वहां जाना चाहता हूँ जहां कोई शौचालय ना हो, है कि नहीं, वो उसके लिए अमेरिका है। तो ये अंततः देखा जाए कि इतना कष्ट काम किस लिए है, ये भौतिक इंद्रिय भोग प्राप्त करने के लिए। इसलिए वो अपने पुत्रों को सबसे पहले कहते हैं कष्टान कामान, इस अत्यधिक कष्ट काम की पूर्ति करने के लिए मत करो। तो यदि उनके पुत्र उनको पूछे तो करे तो क्या करे, पूछ सकते ना, इतना सब कुछ मना कर रहा है तो करने तो क्या करना चाहिए हमें, तो वो अगली लाइन में कहते हैं कि तपो दिव्यम पुत्र कहा, वो कहते हैं मेरे पुत्रों तपस्या करो, क्या करो, तपस्या करो। तो कहेंगे ये तपस्या भी तो बड़ा कष्ट है कि नहीं, तो तपस्या क्या है, कष्ट नहीं है तो क्या है, तो वो कहते हैं ऐसा वैसा तप मत करो। इस संसार में हर एक व्यक्ति तप कर रहा है, हा? देखो हमें तो एक ही पता है कि हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की थी, कैसे, दोनों हाथ ऊपर उठा के अपने अंगूठे के ऊपर खड़ा होकर। लेकिन आप मुंबई ट्रेन में जाओगे लोकल में तो वहां सारे हिरण्यकश्यपु की मुद्रा में है, सारे हाथ ऊपर करके ऐसे लटके हुए है, और वहां कल्याण से लेकर मुंबई सेंट्रल वीटी, और कितने घंटे का वो ट्रैवलिंग है, मेट्रो में, हाँ दिल्ली में भी आ रहा था तो मैं तो अपने साइड में पकड़ा था, मुझे हिरण्यकश्यपु की याद आई थी, बाकी सब तो लटके हुए थे ऐसे। हाँ तो इस प्रकार से देखे तपस्या इस संसार में है, व्यक्ति कर रहा है, हाँ आपको कष्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इंद्रिय भोगों के लिए कर रहे हैं, हाँ भौतिक सुख की कामना के लिए। इसलिए उनके जो ऋषभदेव कहते हैं ऐसा वैसा तप मरो, तप मत करो, कौन सा तप करो, हाँ दिव्य तप, वो कहते हैं कि दिव्य तप करो। तो वो पूछ सकते हैं कि ये दिव्य तपस्या करके क्या हमें मिलने वाला है, तो आखिरी आगे वो कहते हैं शुद्ध तस्मात, वो कहते हैं दिव्य तपस्या से क्या होगा, कोई व्यक्ति अपने जीवन में तपस्या थोड़ी थोड़ी स्वीकार करता है तो उससे वो सत्व गुण में आता है, कौन से गुण में, सत्व गुण, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण अच्छा नहीं है हमारे लिए, मनुष्यों के लिए नहीं है। तमोगुण तो काम की पिपासा के लिए व्यक्ति दिन रात भागता रहता है रजोगुण से, और तमोगुण से क्या करता है, निद्रा आलस आदि प्राणी के जैसा पड़ा रहता है। तो लेकिन एक मनुष्य को कम से कम सत्वगुण में स्थित होना चाहिए, सत्वगुण में ज्ञान है, शांति है, एक प्रकार का सुख है, और वो अनुकूल है भगवत भक्ति करने के लिए। तो इसलिए वो कहते हैं कि तपस्या करने से क्या होगा, सत्व गुण आएगा, और उससे क्या होगा, शुद्धि, क्या है उससे, शुद्धि। तो हम एक्चुअली क्यों कष्ट में है हमारे जीवन में, क्यों पाप में भावना हमारे हृदय में है, क्योंकि अशुद्ध इच्छाएं हैं जिनके कारण हम बारंबार पाप कर्मों में लगे रहते हैं, पता है ये उचित नहीं है, पाप है, फिर भी हम करते हैं, तो इसलिए हम, क्योंकि हम शुद्ध नहीं है। तो शुद्ध होने के लिए वो कहते हैं कि हमें दिव्य तपस्या को स्वीकार करना चाहिए, और दिव्य तपस्या को स्वीकार करते हैं तो हम सत्व गुण में आते हैं, और उससे फिर हम शुद्ध हो जाते हैं। तो वो कहेंगे कि फिर हम क्या सुख के पीछे नहीं भागे? तो ऋषभदेव कहते कि नहीं, ये भौतिक सुख जिसको तुम सुख सोच रहे हो वो शाश्वत नहीं है, वो कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है। क्योंकि वो कहते ऐसा वैसा सुख नहीं, सुख के पीछे भागना है तो एक दिव्य सुख के पीछे भागो, वो कौन सा है? ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, ब्रह्म सुख, भगवत सुख के पीछे भागो, वो क्या है? शाश्वत है। क्योंकि इस संसार का जो सुख है वो उसमें दो चीजें हमेशा है, एक तो उसकी शुरुआत है और उसका अंत है। वो सुख की आशा लगा के हम बैठे रहते हैं, सोचो अभी हमें बहुत ठंड लग रही है तो आशा लगाते सूरज थोड़ा सा आ जाए, हाँ तो आ भी जाता है, लेकिन फिर डरते अरे फिर से सूरज चला ना जाए। हमेशा आशा है सुख की और उसके बाद तुरंत भय है कि वो सुख मेरे जीवन से चला ना जाए, छूट ना जाए। तो इस प्रकार से यहाँ वो कहते हैं कि ये जो भौतिक सुख है उसकी ये स्थिति है। हाँ, जैसे हमें याद है कि बचपन में हम जब कोल्ड ड्रिंक्स को देखते थे तो बहुत दिनों के बाद सोचते थे कि पीना चाहिए, और पीने का मौका मिलता था तो देखते थे कि अरे, और उसको जब खोला जाता था तो आनंद बड़ा आता था, दो चीजें अच्छी लगती थी, जब खोलते थे ओपनर से तो उसका आवाज हो जाता था और उसके बुलबुले बाहर की ओर ना निकलने लगते थे, फिर देखते थे और ओपन करते थे आ कितना सुख है, और फिर सोचते थे कि अभी क्या करें, पीना शुरू करें। तो पीना जैसे शुरू करते थे तो बस थोड़ा सा पीते थे, थोड़ा सिप नहीं, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ताकि आनंद ले उसका, कितना आनंद आ रहा है। जब वो कोल्ड ड्रिंक अंदर जाता है और एक विशेष प्रकार का स्वाद मुंह में आता है और सारे जो इंद्रियां हैं वो खुलने लगती है, नहीं डकारे आती है, हाँ तो इस प्रकार से फिर जब पीते रहते फिर बीच बीच में बोतल को भी देखते कितना बचा कितना बचा, ऐसी हमारी स्थिति है। फिर फाइनल देखते अरे एक ही घूट बचा, फिर क्या करते, फिर आंखें बंद करके हम ऐसे पीते थे कि आखिरी घूट है, पूरा चेतना के साथ उसका आनंद हो, फिर से नहीं मिलने वाला। तो ऐसा भौतिक सुख है, भौतिक सुख के लिए भी हमारी स्थिति ऐसी है, इंद्रियों से जो प्राप्त होने वाला है, क्योंकि हम सोचते हैं धन आ जाएगा, आशा क्या है, आशा कि धन आ जाएगा, और फिर आता है तो फिर उसको लगाते हैं हम भौतिक सुख प्राप्ति के लिए, फिर देखते हैं अरे बैंक बैलेंस कितना रह गया, खत्म हो रहा है, आयु खत्म हो रही है, बल खत्म हो रहा है, सौंदर्य खत्म हो रहा है, सब चीजें खत्म हो रही है, तो फिर हमें भय लगा रहता है। और कुछ समय के बाद देखते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, इंद्रिय सुख। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं असली इंद्रिय भोगी कोई है तो वो कृष्ण के भक्त हैं। कौन है? उनको पता है कैसे सर्वोच्च भोग आनंद उठाया जाए। वो कहते क्यों? क्योंकि उनके पास एक सूत्र है, ऋषि केना ऋषि केश सेवनम भक्ति रुच्यते। वो अपने इंद्रियों को किसकी सेवा में लगाते हैं? कृष्ण की। प्लग इन करना, अपने आप को किसके साथ प्लग इन करना? कृष्ण के साथ। तो फिर कृष्ण तो सबसे आनंद के आगार है, सुख के परम भोक्ता है, तो उनसे फिर हम आध्यात्मिक आनंद को अनुभव करते हैं। तो ये जो भौतिक सुख है वो तुच्छवत लगता है। कैसे लगता है? जैसे आप देखो सुअर कोई मल खा रहा हो तो हमारी जीवा में थोड़ी पानी आएगा कि अरे वो अकेला क्यों खा रहा है, मुझे भी भागना होगा, हमें क्या लगता है, अरे तुच्छवत। वैसे ही माधवेंद्रपुरी जब भौतिक भोग की वो कहते विचार भी आता है तो मैं उसके ऊपर थूक जाता हूं, ऐसी अवस्था उनके हृदय की है, चेतना की है, मन की है। तो उसी प्रकार से जो मनुष्य है यदि परम सुख चाहता है तो उसको आध्यात्मिक सुख की कामना करनी चाहिए। इसलिए शास्त्र कहते रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानंदम चिदात्मने, कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो ऐसे अनलिमिटेड सुख में मग्न रहते हैं, इसके कारण वो सदैव आनंदित होते हैं। अब देखो भौतिक जगत के जो पृथ्वी के वासी है क्या सुख है उनके पास, और जो मनुष्य सर्वसाधारण व्यक्ति, हम सुख का मतलब संडे का इंतजार करते, कब? बाकी दिन तो दुखी रहते हैं, मंडे टू सैटरडे दुखे दिन है, ऑफिस जाना पड़ता है, मिस नहीं कर सकते, लेकिन सुखी दिवस कौन सा है? संडे। जैसे संडे कल आ रहा है तो आज के दिन आनंद फूटता है, जैसे क्रिसमस आ रहा है कल, सबको छुट्टी है आपको, तो लोग क्या कहे सोचते हैं कि बस कल छुट्टी है, लंबा सोएंगे। सबसे पहला सुख मींस क्या, लंबा सोएंगे, जल्दी नहीं उठना है, ऑफिस के लिए जल्दी उठते रहते, तो ये क्या आनंद क्या है इसमें। हाँ, ये तो एक पशु की तरह ही है, सुअर कुत्ता बिल्ली आदि। मैं उस दिन कुत्ते के ऊपर प्रवचन दे रहा था फरीदाबाद में, एक दो घंटे, एक घंटे का प्रवचन था, डॉग फिलोसफी। तो उसमें यही बता रहा था कि कोई कुत्ते सतोगुण में होते, रजोगुण में होते, तमोगुण में होते, और अधिकतर कुत्ते का काम है सोते रहता है, जब मालिक सोता है तो वो जाग के उसको नींद खराब करते रहता है। तो वैसे ही हम देखें कि देवतागण जब ऊपर से देखते मनुष्यों को, वो कहते ये क्या, ये सुअर की जैसे ये लोग घूम रहे इधर उधर। आप सोचो फ्लाइट से नीचे देखते हो तो आपको ये सब गाड़ियां कैसी नजर आती है, मैच बॉक्स। प्रभुपाद पहली बार फ्लाइट में बैठे थे, न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जा रहे थे, तो प्रभुपाद जब उतरे तो उतर के एक प्रवचन दे रहे थे, वेलकम उनका जो कर रहे थे डिवोटीज, तो उन्होंने कहा मैंने देखा अरे ऊपर से तो ये सारी गाड़ियां मैच बॉक्स के समान लग रही थी, जैसे बच्चे खिलौने के साथ खेलते हैं ना छोटी छोटी गाड़ियां। तो देवतागण जब हमें देखते हैं तो कहते ये क्या लोग है, किस चीज में सुख ढूंढ रहे। सोचो कोई देवता आपके घर में आ जाए, वो देखेंगे अच्छा कैसे सुख ये मनाते हैं लोग। देख देखे दिन भर एक बॉक्स के बॉक्स बना के रखा है, उसके सामने रिमोट लेके बैठे रहते, एक बॉक्स का आविष्कार कर दिया मनुष्य ने और उसके अंदर सर डाल के बैठा रहता है दिन रात रजाई ओढ़कर, और वो सोचता है यही सुख है। और उसमें देखता है तो क्या देखता है, हाँ कि एक व्यक्ति ने लकड़ी लकड़ पकड़ी और दूसरा गेंद फेंक रहा है। देवता हंसते रहे ये क्या हो रहा है, ये क्या सुख है, हाँ ये क्या देख रहे बेचारे पागल लोग। हाँ तो इस प्रकार से देवतागण कहते हैं कि ऐसे सुख को ये लोग सोचते कि यही परम सुख है। मैं उस दिन भी बता रहा था कि एक गांव का व्यक्ति जब शहर में आया किसी व्यक्ति के घर में, तो टेलीविजन देख रहा था, टेलीविजन देखते हुए उसने देखा फुटबॉल का मैच हो रहा है, 11-11 कितने लोग 22 लोग भाग रहे हैं, हाँ पूरे कई घंटे तक वो मैच चल रहा है फुटबॉल का। फिर फाइनली जब एंड हुआ तो सबने मिलकर इस गांव से आए हुए व्यक्ति को पूछा कि बताइए आपका साक्षात्कार क्या है, रियलाइजेशन बताइए, इतने समय तक आपने मैच देखा। उसने कहा मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि सारे लोग एक ही बॉल के पीछे क्यों भाग रहे, अच्छा है कि हर एक को अलग अलग एक एक बॉल दे दो। हाँ तो मतलब हम लोग क्या सुख को मान बैठे हैं, है ना, वो पशु के भांति ही हैं। सुअर को जैसे जिस दृष्टि से हम देखते हैं उसी दृष्टि से देवतागण भी हमें देखते हैं, और देवतागण को भी उस दृष्टि से कौन देखता है, जिसके पास ब्रह्म सुख है, हाँ जिसने आत्मा का साक्षात्कार किया है, वो देखते कि ये देवतागण क्या है, हाँ वो अप्सरा के पीछे पागल है, वो कहते तो निम्न सुख है। और ब्रह्म सुख जो ब्रह्म में आनंद लेते हैं, ब्रह्मवादी जिन्हें कहते, उनसे भी बढ़कर आनंद कहाँ है, जो भगवान के भक्त हैं, जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया है, वो कहते ये ब्रह्म साक्षात्कारवादी। तीन प्रकार के साक्षात्कार है ना, ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान, हमने पिछली बार ये चर्चा की थी। तो जो भगवत साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति, वो देखते कि ये ब्रह्म साक्षात्कारवादी ये बाल्टी में गोते लगा रहे हैं, यहाँ आओ भक्ति रसामृत सिंधु में क्या हो जाओ, डूब जाओ, जो यहाँ इतना अत्यधिक आनंद है। तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं, हाँ विशेष रूप से ऋषभ देव ने कहा कि ये मनुष्य जीवन बहुत मूल्यवान है और इससे आध्यात्मिक सुख प्राप्ति की कामना करनी चाहिए। तो इस श्लोक में वो यही बता रहे हैं, मनुष्य जीवन को सफल बनाने की विधि बता रहे हैं। किस चीज की विधि, मनुष्य जीवन को सफल, हाँ ये प्रोसेस है मनुष्य जीवन में परफेक्शन प्राप्त करने की। तो कैसे प्राप्त किया जा सकता है मनुष्य जीवन में सफलता, तो उसके लिए 7 प्रकार का नॉलेज आपको होना आवश्यक है। कितने प्रकार का, हाँ मैं आपको इसके बाद पूछूंगा क्या क्या है 7, तो आप ध्यान से सुनिए। हाँ हमारे पास 10 मिनट्स है। तो सबसे पहले व्यक्ति को नॉलेज होना चाहिए, इस भौतिक संसार के स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। किस चीज का ज्ञान, मटेरियल वर्ल्ड की जो स्थिति है, भौतिक संसार की जो स्थिति है उसका ज्ञान होना चाहिए। सोचो आप यहाँ दिल्ली में रह रहे हो, हाँ तो दिल्ली में रह रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको दिल्ली का ज्ञान होना चाहिए कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन कहाँ है, मेट्रो स्टेशन कहाँ है, पुलिस स्टेशन कहाँ है, कुछ बेसिक आपको क्या होना चाहिए, डिटेलिंग पता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप इतने सालों से रह रहे हो और आपको कोई पूछे कि कहाँ है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, आप कहेगी कोई भी रास्ता पकड़ो कहाँ पहुंचोगे, जहां रेल शुरू हो जाती है वहां से रेलवे स्टेशन शुरू हो जाता है, सारे रास्ते जहाँ एंड होते हैं वो रेलवे स्टेशन है, ऐसे नहीं। हाँ, तो इस प्रकार से जो भी व्यक्ति इस भौतिक संसार में है, मटेरियल वर्ल्ड में है, उसको इस भौतिक प्रकृति का ज्ञान होना परम आवश्यक है। हाँ, तो ये ज्ञान भगवान भगवद गीता में देते हैं। और क्या बोलते हैं भगवत भौतिक संसार के बारे में, दुखालयम अशाश्वतम, दो चीजें बताते हैं, ये है भौतिक प्रकृति का या भौतिक संसार का ज्ञान। और भी अधिक डिस्क्रिप्शन है जो हम गीता में और श्रीमद् भागवतम में प्राप्त करते हैं शास्त्रों के माध्यम से, लेकिन ये सार है कि ये संसार दुखालय है। कोई व्यक्ति कह सकता है कि विद्यालय का मतलब है जहाँ विद्या मिलती है, लेकिन लाइब्रेरी में बैठ के भी मैं मेरा लंच का जो डब्बा है बॉक्स खोल के खा सकता हूँ भोजन, तो विद्यालय नहीं है वो, विद्यालय के साथ खा भी सकता है। या कोई व्यक्ति कह सकता है कि भोजनालय मतलब कि जहाँ केवल भोजन ही मिलता है, तो व्यक्ति वहां बैठ के कोने में पेपर भी पढ़ सकता है, पढ़ सकता है कि नहीं। कोई कहे कि कृष्ण ने बोला ठीक है दुखालय, लेकिन मुझे तो मेरे पास तो अच्छी गवर्नमेंट सर्विस है, मेरे पास तो मेरा फैमिली है, घर है, गाड़ी है, मकान है, मैं तो सुखी हूं, बोलते कि नहीं बोलते लोग। इसलिए कृष्ण ने अगला शब्द यूज किया अशाश्वतम, कौन सा, ठीक है आप सोच रहे हो मैं खुश हूं, लेकिन बेटा इंतजार करो, जस्ट फ्यू मिनट्स, कुछ घंटे, कुछ साल, आप ये आपके पास ये सारा चीज है नहीं रहने वाली, आप खुद ही बूढ़े होने वाले हो, मरने वाले हो, आपके पास ये जो भी चीजें शरीर से संबंधित है वो आपसे छीनी जाएगी फोर्सफुली। इसलिए कृष्ण कहते हैं ये भौतिक संसार भी अशाश्वतम है। और इसी की चीज शिक्षा भागवतम में भी ब्रह्मा जी कहते हैं पदम पदम यत विपदाम। ब्रह्मा जो आर्किटेक्ट है इस भौतिक जगत के, उन्होंने भी बोला कि ये संसार विपदाओं से भरा पड़ा है। तो पहला नॉलेज कौन सा होना चाहिए, भौतिक संसार की स्थिति का ज्ञान, और दूसरा होना चाहिए हमारे भौतिक स्थिति का ज्ञान, किसके पर्सनल हमारी स्थिति का, कि मैं कौन हूं, मेरी क्या स्थिति है। इसलिए इसका नॉलेज गीता में कृष्ण देते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मन शस्तानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान कहते ये जीवात्मा मेरा शाश्वत अंश है, और ये अपने मन और पांच इंद्रियों के कारण पागल की तरह संघर्ष कर रहा है। प्रभुपाद एक बार प्रवचन दे रहे थे, वो कह रहे थे कि ये जो जीव है वो प्रकृति के साथ कुश्ती लड़ रहा है इंद्रिय भोग करने के लिए, कि यहाँ ही रहना है मुझे, भौतिक जगत में यही आनंद प्राप्त करना है। कहते प्रकृति बहुत कठोर है, किसकी सुनती नहीं है वो, हाँ वो सबको दंड देके रहती है, कष्ट देती है, उसका काम ही है। और तीसरा क्या है, हमारे सौभाग्य का ज्ञान हमें होना चाहिए कि मैं कितना फॉर्चुनेट हूं, कैसा फॉर्चून। हम देखे कि हम इस भौतिक जगत में जन्म भी लिए हैं, लेकिन फिर भी भगवान और उनके भक्तों की इतनी कृपा है कि मुझे उनके बारे में सुनने का मौका मिल रहा है, उनका प्रसाद ग्रहण करने का मौका मिल रहा है, उनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। ये भगवान का जो पवित्र नाम है, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जोर से उसका उच्चारण करने का मौका मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, हाँ हम अनुभव करें कि क्योंकि ये जो भगवान का पवित्र नाम है, इसका उच्चारण करने के लिए सत्ययुग के जो लोग हैं वो भी ताक में लाइन में खड़े रहते हैं कि कब कलयुग आएगा और हम उसमें जन्म लेंगे और क्या उच्चारण करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रभुपाद ने कहा कि जो सत्ययुगा के बड़े बड़े मुनि लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये हरे कृष्णा ग्रस्त भक्तों के घर में हम उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, ताकि बचपन से क्या सुनाई मिलेगा, कृष्ण नाम, प्रसाद, आध्यात्मिक नाम, गीता भागवत के बारे में, भगवान की सेवा करने को मिलेगी, तुलसी की सेवा करने मिलेगी, वृंदावन जाना मिलेगा, जगन्नाथपुरी मायापुर, बचपन से ही। इसलिए वो प्रभुपाद कहते ये बड़े बड़े मुनि ऋषि भी सत्ययुगा के कलियुगा में भक्तों के घर में जन्म चाहते हैं। हाँ, तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हम फॉर्चुनेट हैं, ये मेरा, इसलिए हमें अपने सौभाग्य का ज्ञान होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए, हमें क्या होना चाहिए, कृतज्ञ। हाँ, जैसे एक व्यक्ति, एक भिखारी एक रेड लाइट में खड़ा रहता था। एक व्यक्ति रोज ऑफिस जाते समय उधर आता था और उस भिखारी को एक रुपया देता था। तो देखा एक हफ्ते तक वो आया नहीं। हाँ, अरे रोज वेट कर रहा है, अभी एक हफ्ता हो गया आया नहीं। और फाइनली एक दिन, वो 7 दिन के बाद वो व्यक्ति ऑफिस जाने के लिए आता है रेड लाइट पर, तो वहां ये भिखारी जाके उसके पास क्या कहता है, कितने दिन आप नहीं थे? तो कह रहे कितने दिन, 7 दिन। तो कहते भी 7 रुपए निकालो। कितने रुपए? कहते हट यहां से, हाँ हफ्ता मांग रहे हैं मुझसे। तो मतलब वो ग्रेटफुल नहीं है, अपना वो 1 रुपया उसको मिल रहा है उसके लिए वो ये नहीं है, कृतज्ञ नहीं है, वो अपने सौभाग्य को नहीं समझ रहा है। हाँ, तो एक व्यक्ति, एक दूसरे भिखारी का भी उदाहरण मेरे दिमाग में आ गया। वो एक भिखारी एक क्या कहते लाला जी के पास जाते थे। उन्होंने कहा 1 रुपया दे दो। वो कहते कल आ जाओ। वो भिखारी उसे कहता है, आप लोग लाला लोग कल कल कह के मेरे लाखों रुपए आपके पास ही रह गए। मैंने कितने कल बोले होंगे उसने। हर बार जाओ कल 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 कहते, इतने दिन बिता दिए। इस प्रकार से कृतज्ञ नहीं है। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा देखे कृष्ण की कृपा को, फिर हम स्ट्रेस चिंता से परे रहेंगे। और चौथी चीज क्या है, भगवान के अस्तित्व का ज्ञान होना चाहिए हमें। हाँ, भगवान के अलग अलग अवतार, भगवान का परमात्मा फॉर्म, उनके डिवोटीज, विग्रह, नाम, प्रसाद, हाँ ये सब चीजों के प्रति, और ये विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण है, भगवान है, उनके अस्तित्व का ज्ञान और अनुभव करें हम अपने जीवन में, उनके शक्ति को देखें। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे पास भगवान का एड्रेस है, उनका नाम है, पता है, सब कुछ है। इतना ही नहीं, उनके पार्षदों का बारे में हम बोल सकते हैं। इतना ही नहीं, भगवान 24 घंटे क्या कार्य करते वो भी हमारे पास है। फिर भी तुम कहते हो कि भगवान नहीं हो, रास्कल, ऐसे वो कहते थे, अरे मूर्ख व्यक्ति, इतना सब कुछ हम बोल रहे हैं फिर भी आप कहते हो भगवान नहीं है। इस प्रकार से हमें चौथी चीज क्या है, भगवान का जो अस्तित्व है उसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। और पांचवी चीज क्या है, कि हमें भगवान को भावपूर्ण प्रार्थनाएं करनी चाहिए, भगवान के सामने जाकर प्रेयर्स हम करें भगवान को। जब हम उनके अस्तित्व को जानेंगे तो नेचुरली हमारे अंदर ये भावना आएगी कि भगवान विभू हैं, वो ग्रेट हैं और मैं बहुत छोटा हूँ, नगण्य जीव हूँ, तुच्छ जीव हूँ, और फिर हम उनसे रियली अपने हृदय से प्रार्थना कर सकते हैं। तो कोई व्यक्ति कह सकते हैं कि मैं तो रोज प्रार्थना करता हूँ। अधिकतर प्रार्थना किसके लिए हम करते हैं, धनम जनम ये सब चीजों के लिए, भौतिक चीजें बढ़ा दो भगवान मेरे लाइफ में। भगवान के पास प्रॉब्लम लेकर ही जाते हैं, कभी खुशी की न्यूज लेकर रेयरली पहुंचते, क्योंकि समय ही नहीं है ऐसा लाइफ में, कोई समस्या के बिना दिन जाता ही नहीं है, कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो कोई व्यक्ति कह सकता है कि भगवान बहुत प्रार्थना कर ली आपको, अभी आप सब कुछ देख लीजिए, मैं चलता हूँ। नहीं, इससे काम नहीं होने वाला। अगली चीज क्या है, छठी, प्रैक्टिकल भक्तिमय सेवा करनी होगी। क्या? प्रैक्टिकल भक्तिमय सेवा, इसलिए भक्ति शब्द का अर्थ है डिवोशनल सर्विस। तो भगवान ऐसे नहीं है कि केवल प्रार्थना करो, 10 रुपए जाके हुंडी में डालो कि आपने बहुत भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा कर दी आज, मैंने मंदिर में जाके, ये भावना आती है ना हमें कि मैंने तो बस इतना डोनेशन डाल दिया, ऐसे सीना तान के कॉलर खड़ी करके हम वापस आते और 10 लोगों को बोल भी देते। तो हम सोचते हैं कि मैंने उपकार कर लिया आकर भगवान के ऊपर, मेरे कारण क्या हो रहा है, भगवान की पूजा अर्चना हो रही है। नहीं, हमें भगवान की प्रैक्टिकल सेवा करनी चाहिए। कुछ ना कुछ सर्विस हम भगवान की करें, सेवा के लिए लालयित हो, भगवान की सेवा करने के लिए। जैसे महीना है, पुस्तक वितरण करे, भगवान के मैसेज को दूसरों को दे, भगवान की कई प्रकार से सेवा करने का प्रयास करे। और सेवा क्या है, उनके नामों का उच्चारण एवरीडे करे। लोग कहते ना, अरे अंदर होना चाहिए, बाहर से क्यों नाम लेना है। तो प्रसाद पाना है, भोजन करना है, तो व्यक्ति कैसे थाट बाट से खाता है कि नहीं, लेकिन जब भगवान के नाम करने के समय आता है, कथा सुनने का समय आता है, कहते नहीं बाहर नहीं अंदर ही अंदर होना चाहिए। ऐसे सब लोग नास्तिक है, ऐसे सब लोग भागना चाहते हैं रियलिटी से। तो इसलिए है भगवान की प्रैक्टिकल जो सेवा है हमें करने के लिए तत्पर होना चाहिए, पूछना चाहिए क्या मैं सेवा कर सकती हूँ, क्या सेवा कर सकता हूँ भगवान के लिए, भगवान क्या अपेक्षा करते हैं हमसे। भगवान तो यही कहते, चार चीजें कहते, मन मना भव मन, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, हाँ मेरे नामों का उच्चारण। तो यही तो कृष्ण चाहते हैं, हमें थोड़ी कृष्ण हमसे कुछ अपनी चीजें खींच रहे हैं। हाँ इसलिए है भगवान की इस प्रकार से सेवा करने के लिए तत्पर होना चाहिए, प्रैक्टिकल सेवा। और सातवीं चीज क्या है, जब ऐसी भगवत सेवा में हम नियुक्त होते हैं तो भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति स्थापित हो जाती है। सातवीं चीज है फुल्ली सरेंडर, हाँ शरणागत हो जाना चाहिए अपनी भावना को। तो इसके महान उदाहरण कौन है, सातों चीजें हम ध्रुव के जीवन में देखते हैं। हाँ जो ध्रुव महाराज थे, ध्रुव बालक, जब ध्रुव ने अपने जो फादर है उत्तानपाद उनके गोद में बैठने के लिए गए तो वहां उनकी जो सौतेली माँ थी सुरुचि, उसने उनको क्या किया, निकाल दिया, खींच दिया। तो उन्होंने पहली चीज अनुभव की क्या, पहला पॉइंट क्या था हमारे डिस्कशन का, भौतिक संसार के स्थिति का ज्ञान। तो उन्होंने ये पहला ज्ञान प्राप्त कर लिया कि मैं, मतलब उनकी माँ एक प्रकार से सिखा रही है कि तुम जिस चीज में कंफर्ट ढूंढ रहे हो पिता के गोद में, वो कंफर्ट नहीं है, कष्ट है वहां। तो ये भौतिक प्रकृति का ज्ञान उनको सबसे पहले हुआ। और दूसरी चीज उन्होंने अपने भौतिक स्थिति का भी उनको ज्ञान हो गया ध्रुव को, कैसे, क्योंकि उनके माँ ने कहा तुम्हें वहां तभी बैठ सकते हो यदि तुम मेरे कोख से, मेरे गर्भ से जन्म लोगे तो। हाँ तो इनको पता चला कि ये मेरी स्थिति तो है नहीं, मैं तो उसके गर्भ से मैंने जन्म नहीं लिया, क्योंकि तुमने ऐसे स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है जिसमें तुम्हारे पिता उत्तानपाद रुचि नहीं रखते। रुचि किस में रखते है, मुझ में रखते है। ध्रुव की माता का नाम क्या था, सुनीति, और वो दूसरी का नाम क्या था, सुरुचि। तो उत्तानपाद सुरुचि में रुचि रखते थे, सुनीति में नहीं। तो इस प्रकार से उनको वो भी ज्ञान हुआ। और तीसरी चीज क्या है, ध्रुव अपने सौभाग्य का ज्ञान भी अब अनुभव कर रहे थे। क्या कि देखो मुझे कैसी माता मिली है, सुनीति जैसी माता। हाँ सुनीति जैसी माता हो तो उसके गर्भ से कौन से पुत्र जन्म लेंगे, ध्रुव। जहां नीति है वहां ही ध्रुव जैसे बालक पैदा होंगे, अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार से ये भी अपने सौभाग्य का उनको ये नॉलेज होता है। और चौथी चीज क्या है, उनको ये भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो भगवान के अस्तित्व का। किन से भगवान के अस्तित्व का ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपनी माता को जाके पूछते हैं मुझे ब्रह्मा से भी बढ़कर पद चाहिए, क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा भगवान ही दे सकते हैं। तो भगवान का प्रथम नॉलेज सुनीति ने ध्रुव को दिया, और आगे जाकर नारद मुनि ने भी उनको भगवान के अस्तित्व का ज्ञान दिया। और पांचवी चीज क्या थी, प्रार्थना। तो नारद ने उनको प्रार्थना सिखाई, कौन सी प्रार्थना सिखाई, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सत्ययुगा में वो उच्चारण कर रहे थे। तो भगवान की प्रार्थनाएं उन्होंने की। और सातवीं चीज है, छठी चीज है प्रैक्टिकल सेवा। प्रैक्टिकल सेवा क्या, उन्होंने मधुसूदन कृष्ण के विग्रह बनाए नारद के आदेश से, उनकी सेवा की और 6 महीने कठोर तपस्या की। हाँ जिसके द्वारा सातवीं चीज क्या है, शरणागति। फुल्ली शरणागति का भाव उनके हृदय में जागृत हो गया जब भगवान प्रकट हो गए ध्रुव के लिए। तो ध्रुव कहते कि भगवान, हाँ भगवान कहते क्या चाहोगे, तो कहते कि देखो स्वामी कृतार्थमसि वरम न याचे। वो कहते हैं कि मैं तो अभी कृतार्थ हो गया हूं, मुझे किसी और वर की कामना नहीं है। आप तो हीरे मोती देने वाले हो लेकिन मैं इतना मूर्ख कि कांच के टुकड़े मांगने के लिए मैं आपके पास आया। ध्रुव किस कामना से गए थे, ब्रह्मा का पद या ब्रह्मा जैसे बड़ा राज्य चाहिए, भौतिक राज्य। इस प्रकार से ये हम सीख सकते हैं ऋषभ देव की शिक्षा से, कि कहते हैं कि जिसके पास मनुष्य जीवन है उस व्यक्ति को कष्टान कामान, भौतिक कामनाओं की पूर्ति करने के लिए अहर्निश दिन रात कष्ट नहीं करना चाहिए। फिर किसका उदाहरण देते हैं, सुवर का उदाहरण देते हैं, जो केवल अंततः इंद्रिय भोग या विष्टा प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। तो हमें भी अपना मनुष्य जीवन ऐसे गवाना नहीं चाहिए। तो करना है तो क्या करे, तो ऋषभ देव कहते हैं तपस्या करो। कौन सी? दिव्य तपस्या। तपस्या से क्या होगा, सत्व गुण की वृद्धि होगी, और सत्व गुण से शुद्धि होगी, और शुद्ध होकर हम भगवत सुख अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे, और फिर भौतिक भोग की लालसा से हम मुक्त हो जाएंगे। इसलिए ये 7 स्टेप्स का ये प्रोग्राम है जिसको हमें जानना चाहिए। और ये कब होगा, जब हम निरंतर भगवान के भक्तों के सहचार्य में आते हैं और उत्साह के साथ जानने का प्रयास करते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं और निरंतर सेवा में प्रवृत्त होते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के पदित पावन श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे।